आप हैं SBS हिंदी के साथ।
पेश है आज के मुख्य समाचार विशाली जैन के साथ। ईस्टर रविवार पर स्वास्थ्य बना चुनावी दंगल का मुद्दा। दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा में फिर लगी आग। और प्रिंस हैरी और मीगन ने इन्विक्टस गेम्स के उद्घाटन समारोह में की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। फेडरल विपक्ष ने सांसद एन रुस्टन के स्वास्थ्य मंत्री बनने की संभावना का कड़ा विरोध किया है। ये खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मॉरिसन सीनेटर रुस्टन को, जो फिलहाल सोशल सर्विसेज मंत्री हैं, फेडरल गठबंधन के चुनाव जीतने पर स्वास्थ्य मंत्रालय सौंप सकते हैं। सुश्री रुस्टन ग्रेग हंट की जगह आएंगी, जो कि अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पर नेता प्रतिपक्ष एंथनी एल्बनीजी का कहना है कि सीनेटर रुस्टन की ये पदोन्नति यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए एक बड़ा खतरा होगी।
Now, Anne Rustin has made it very clear that she wants to take the universal out of universal health care. People are already seeing escalating costs of health care. They're already seeing cuts to health care and cuts to Medicare. And the appointment of Anne Rustin sends a very bad message that this government, if it is re-elected, will make further cuts.
फेडरल सरकार चुनाव में अपनी नवीनतम स्वास्थ्य कटिबद्धता को मजबूत आर्थिक प्रबंधन के उदाहरण के रूप में पेश कर रही है। सरकार आज यानी 17 अप्रैल को टाइप 1 डायबिटीज मरीजों के लिए $273 मिलियन की योजना ला रही है। उनका कहना है कि इस राशि से कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे 71,000 मरीजों के लिए सालाना $5,000 तक की बचत हो सकेगी। सुपर एनुएशन और फाइनेंशियल सर्विसेज मंत्री जेन ह्यूम ने स्काई न्यूज से कहा है कि सरकार ऐसे वादे कभी न कर सकती अगर उनका आर्थिक प्रबंधन अच्छा नहीं होता।
Coalition government is focused on issues that are most important to voters, their futures, their lives, and what's important to them. And the health announcements today are just part of that. You know, without delivering a strong economy, we couldn't make the commitments to health that we have.
दूसरी तरफ ग्रीन्स पार्टी का दावा है कि वे ऑस्ट्रेलिया के कोयला और गैस निर्यात की जगह दूसरी हरित ऊर्जा का निर्यात करेंगे अगर वे सत्ता में आते हैं तो। पार्टी लीडर एडम बैंड का कहना है कि वे फेडरल चुनाव को नो न्यू कोल और गैस माइनिंग की योजना के साथ लड़ना चाहते हैं। श्री बैंड ने 9 नेटवर्क से कहा कि ऑस्ट्रेलिया को सोलर पावर, विंड पावर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी ऊर्जाओं का निर्यात करना होगा।
Opportunities for Australia in actually selling our sun and our wind. And one of the big opportunities for us is in areas like green hydrogen, where all of our big trading partners, like 3/4 of our exports go to 3 countries. And they've all said that they're moving to net zero by the middle of the century. And if you dial back from that, that means that by 2030 or 2040, they don't want to use coal for energy anymore. So we've got to have something to take its place.
श्री बैंड का कहना है कि उनकी पार्टी प्रयास करेगी कि डेंटल और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी मेडिकेयर के तहत मुहैया कराई जा सकें। उनका मानना है कि अरबपति व्यक्तियों और बड़ी कॉरपोरेशन कंपनियों पर अधिक टैक्स लगाकर वो उनकी सरकार माफ कीजिएगा और इनसे सरकारी समर्थन वापस लेकर इन योजनाओं को पोषित किया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। देश भर के चर्च आज विशेष प्रार्थना सभाएं करते नजर आए और दोनों ही प्रधानमंत्री मॉरिसन और नेता प्रतिपक्ष एंथनी एल्बनीजी ने इस मौके पर देश को बधाई दी। श्री एल्बनीजी ने कैंस में एक कैथोलिक सर्विस में हिस्सा लिया। वहीं श्री मॉरिसन ने दक्षिणी सिडनी के सदरलैंड में होराइजन चर्च की सर्विस में शिरकत की। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि त्योहार के समय को वे दोस्तों और परिवारों के साथ मिलकर मनाएं।
And a time that we can look forward to the future with confidence. If you're out on the roads over the weekend, please be safe when you're driving home. Please be safe when you're driving home. But really enjoy this wonderful time together. God bless. Happy Easter.
वहीं देश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में आज 6 कोरोना मृत्यु और 9725 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी ओर विक्टोरिया में 2 लोगों ने इस घातक वायरस के चलते अपनी जान गंवाई है और 8153 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। क्वींसलैंड में 4850 नए संक्रमण सामने आए हैं और नॉर्दर्न टेरिटरी में यह आंकड़ा 340 का रहा है। वहीं तस्मानिया में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु हो गई है और 1212 नए कोरोना संक्रमण सामने आए हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 8 कोरोना मृत्यु और 5112 नए मामले, जबकि साउथ ऑस्ट्रेलिया में 2675 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूक्रेनियाई राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मारियोपोल की परिस्थितियों को अमानवीय बताया है। रूस ने ईस्टर सप्ताहांत पर इलाके में हमले तेज कर दिए थे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनियाई सैन्य बल से कहा है कि अगर वे चाहते हैं कि मारियोपोल में और नुकसान नहीं हो तो रविवार तक अपनी ओर से लड़ाई रोक दें। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस परिस्थिति को अमानवीय बताया और विदेशी साझेदारों से आग्रह किया कि वे यूक्रेन को और हथियार दें ताकि वे रूस के बढ़ते आक्रमण का सामना कर
सकें। Leading architects, the full potential of the state and international support. We will add the participation of companies, partner countries and international donors. I have absolutely no doubt that we will be able to do this. It will be possible not only to restore the destroyed buildings, but also to restore justice for those whose right to housing has been violated.
दूसरी ओर श्रीलंका में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्सा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। श्रीलंका में हफ्तों से लगातार आर्थिक आपदा के चलते प्रदर्शन जारी हैं। देश में बिजली की कमी, ईंधन की कमी और दवाइयों की कमी के चलते स्थितियां चिंतापूर्ण हो गई हैं। ये महिला अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी कोलंबो में श्री राजपक्सा के दफ्तर के निकट प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंची थीं। उनका कहना रहा कि प्रदर्शन में प्रतिभागिता उनका कर्तव्य था।
I came here to show my support for the people who are doing the protest and also I believe that we need to do our part to stop this corruption by the ruling people.
श्री राजपक्सा के भाई महिंदा राजपक्सा श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। हाल के दिनों में सरकार ने घोषणा की थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के साथ चल रही कर्जे की एक योजना के फलीभूत होने तक वे बाहरी ऋणों के भुगतान को फिलहाल के लिए रोक देंगे। और अब खबरें भारत से। दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा हॉल में एक बार फिर आग लगने की घटना हुई है। रविवार की सुबह फायर डिपार्टमेंट के पास ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में आग लगने की सूचना आई। टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि आग उपहार सिनेमा हॉल में लगी है। बता दें कि इस सिनेमा हॉल में इससे पहले 1997 में आग लगी थी जिसमें 59 लोग मारे गए थे और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि थिएटर की बालकनी और एक मंजिल पर लगी आग में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली दमकल सेवा विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि भारतीय समय से तड़के सुबह उपहार सिनेमा घर में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 9 गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना की गईं। श्री गर्ग के मुताबिक सिनेमा घर में मौजूद सीट, फर्नीचर और कबाड़ में आग लग गई थी, जिस पर करीब 2.5 घंटे में काबू पा लिया गया। 3 जून 1997 को इसी सिनेमा घर में लगी भीषण आग में 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। गौरतलब है कि 13 जून 1997 को हुई उस घटना के आरोपी सुशील अंसल और गोपाल अंसल को हाल ही में दिल्ली के हाईकोर्ट से झटका लगा था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की 7 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। ये हॉल 1997 से ही बंद है। वहीं भारत में अगर कोरोना की स्थिति की बात करें तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 1150 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में देश में कोविड के नए मामलों में उछाल आया है। कल यानी शनिवार को देश भर में कुल 975 नए मामले दर्ज किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कुल 4 लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है। देश में फिलहाल कुल सक्रिय मामलों की संख्या 11,558 है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में कुल 186.51 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.44 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मीगन ने इनविक्टस गेम्स के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। ये खेल द हेग में खेले जा रहे हैं। इनविक्टस गेम्स एक बहुमुखी खेल स्पर्धा है जिसे 2017 में प्रिंस हैरी ने युद्ध में घायल हुए सिपाहियों के लिए शुरू किया था। कनाडा के गैरेट पार्स का कहना है कि वे खुश हैं कि वे इन खेलों में हिस्सा ले पा रहे हैं।
I was selected for the Invictus Games for Team Canada. I've had a rough last year. I have battled cancer and went through 9 rounds of chemotherapy and had my arm amputated. So the Canadian military thought it would be a good opportunity for me to come and get back in the game and play some sports with my colleagues.
और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल अधिकांश रूप से धूप ही धूप रहेगी। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में हल्की बरसात की आशंका है। यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में बरसात बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 19 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में बादल घिरे रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में भी कल बरसात बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी धूप छांव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल धूप ही धूप है। अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल तेज धूप खिली रहेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी के साथ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।